प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी के चरण कमलों में। बच्चों को शांत कीजिए। तो ये जो स्थान है यहाँ नाथ द्वारा क्यों नाम है, क्योंकि यहाँ श्रीनाथ जी निवास करते हैं। श्री का मतलब क्या है, श्री का दो अर्थ है, एक है लक्ष्मी और एक है श्रीमती राधिका। तो जहां क्योंकि लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है, जितनी अनंत कोटि लक्ष्मियां हैं, जितनी सारी शक्तियां हैं, दुर्गा देवी आदि, चंडिका आदि आदि जितनी भी शक्तियां हैं, फीमेल फॉर्म है, वो सब भगवान से ही प्रकट होते हैं। क्योंकि एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, परम भगवान तो एक है, इसलिए श्रीमद् भागवतम कहता है एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवतम में 25 अवतारों का वर्णन करने के बाद सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि जो मैंने इन सारे अवतारों का वर्णन किया है, ये तो भगवान के अंश और कला है, लेकिन साक्षात परम भगवान कौन है, कृष्ण है। तो कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यह शब्द भागवतम कहता है कि कृष्ण स्वयं भगवान है, सारे अवतारों के स्रोत हैं। तो कृष्ण से उनकी राइट साइड से अलग अलग अवतार प्रकट होते हैं, उनका विस्तार होता है। तो कृष्ण के राइट से बलराम सबसे पहले विस्तार होता है, बलराम से आगे शंकरषण प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि चतुर्व्यो, फिर उनके बाद महासंकर्षण, अलग अलग विष्णु निकलते हैं, फिर ये सारे अवतार वगैरह आते हैं, राम नरसिम्ह वराह इत्यादि। और भगवान के लेफ्ट साइड से शक्तियाँ, भगवान के लेफ्ट से सर्वप्रथम श्रीमती राधिका, और राधिका से ये जो द्वारका की जो 16,108 रानियाँ हैं, रुक्मिणी सत्यभामा नग्नाज्योति भद्रा आदि, ये सब प्रकट होती हैं। और इनसे ही जो लक्ष्मी है वैकुंठ की निवासिनी, वो भी प्रकट होती है। इवन उनके द्वारा आगे आगे ये सब दुर्गा देवी और ये सब प्रकट होती है। तो वो श्री, श्री का मतलब ही है, श्री का एक अर्थ है सौंदर्य भी होता है। तो जो भगवान है नाथ, नाथ का मतलब उस दिन हमने समझा था, नाथ का मतलब क्या है, स्वामी मास्टर। तो जो लक्ष्मी है या श्रीमती राधिका है, उनके नाथ कौन है, कृष्ण है, इसलिए इनको श्रीनाथ जी कहा जाता है। तो श्रीनाथ जी यहाँ पहले नहीं थे, ये जो विग्रह है श्रीनाथ जी, ये मूलतः वृंदावन के विग्रह है, वृंदावन निवासी हैं कृष्ण। तो ऐसे वृंदावन के ये जो श्रीनाथ जी हैं वो यहाँ आते हैं। हमने पूरी अपनी यात्रा में कृष्ण के अलग अलग विग्रहों के दर्शन किए हैं, द्वारका में, द्वारकाधीश के रूप में ज़्यादातर हमने जो दर्शन किया है, गोपी तालाब में हमने कृष्ण को त्रिभंग ललित रूप में खड़े हुए देखा है, गोपीनाथ का विग्रह था ना, बांसुरी मुरली वदन करने वाले जो गोपीनाथ हैं। तो यहाँ भी वृंदावन के ही कृष्ण हैं जो गोपिकाओं के सर्वाधिक प्रिय हैं। तो ये जो विग्रह है श्रीनाथ जी, इनकी जो इनका जो प्राकट्य करवाया था भगवान के जो प्रपौत्र थे भगवान के पुत्र थे प्रद्युम्न, उनके पुत्र थे अनिरुद्ध और उनके पुत्र थे वज्रनाभ। तो वज्रनाभ, जैसे मैंने कहा कि द्वारका का प्रलय होने के बाद अर्जुन ये वज्रनाभ और कुछ रानियों को लेके हस्तिनापुर आए थे, तो वज्रनाभ जो यदुवंश का आखिरी एक वंश था, एक व्यक्ति था जो राजकुमार था, तो उस समय ब्रज बिल्कुल खाली हो गया था, वृंदावन को पहचानना दुर्लभ हो गया था, कोई भी ऐसी निशानी नहीं थी कि जिससे पता चले कि यहाँ कृष्ण का वास्तव्य था और कृष्ण ने यहाँ नाना प्रकार की लीलाएं की। तो केवल तीन चीजों का अस्तित्व दिख रहा था, एक था गोवर्धन और दूसरी यमुना नदी और तीसरा ब्रज की धूली, बस इन तीन चीजों से समझा जा सकता था कि यह वृंदावन है, अन्यथा असंभव था। तो फिर ये जो युधिष्ठिर महाराज आदि अर्जुन आदि ने क्या किया, मथुरा में कई ब्राह्मणों का निवास करवा कर वज्रनाभ को वहां का राजा बनाया। और वज्रनाभ कृष्ण के बहुत महान भक्त थे, बल्कि भगवान के वंश में उनका प्राकट्य हुआ है, उनका भगवान के लिए स्वाभाविक प्रेम था वज्रनाभ का। तो वज्रनाभ ने देखा कि मुझे तो यहाँ का राजा बनाया है मथुरा का, और मथुरा और ब्रज, ब्रज का मतलब क्या है, ब्रजति इति ब्रज, मतलब जहाँ हर चीज चलती है उसको ब्रज कहते हैं। ब्रज मतलब जहाँ चीज़ें चलती है, क्या क्या चलती है वहाँ चीज़ें, गायें चलती है, ग्वाल बाल, गोपिकाएं, नंद महाराज, हर समय जहाँ मूव करती हैं, भ्रमण करते हैं, उसको ब्रज कहा गया है। और ब्रज वहाँ तक है जहाँ तक नंद महाराज आदि ने भ्रमण किया है, 84 कोस एरिया जो है उसको ब्रज कहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से ब्रज तो खाली हो गया था, और ये जो वज्रनाभ है ये भ्रमण कर रहे थे, कोई भी ऐसा लीला स्थल नहीं था। तो फिर जो शांडिल्य ऋषि हैं उन्होंने क्या किया, वज्रनाभ को कहा कि आप भगवान की लीला स्थलियों को खोज निकालिए, और वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं उन उन स्थानों में भगवान के विग्रहों की स्थापना कीजिए। तो फिर शांडिल्य मुनि के आदेशानुसार वज्रनाभ अकेले ब्रज में घूमने निकले, तो देखा कि सब जगह खाली खाली है, फिर किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि वहां के वृक्ष क्या है, कल्प वृक्ष है, हमने पिछली बार सुना था। तो कल्प वृक्ष वज्रनाभ को गाइड करते थे कि ओ कृष्ण ने यहाँ शकट यहाँ कालिया का वध किया था, कालिया को दंडित किया था, यहाँ बकासुर को मारा था, यहाँ अरिष्टासुर को मारा था, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट आसुरों को मारा था, यहाँ भगवान ने ये लीला की थी गोपिकाओं के साथ, ये वंशीवट है, ये राधा कुंड है। तो ऐसे बहुत सारे लीला स्थलियों का जो खोज है वो किसने की थी, सबसे पहले ब्रज में वज्रनाभ ने, और उन उन स्थानों में उस स्थानों के अनुसार वहाँ के गांवों का नाम दिया गया। जैसे आप हाईवे में जाएंगे दिल्ली से ब्रज में आप जाते हैं पलवल से आगे वगैरह, तो एक बोर्ड आता है चौमुहा, आप याद होगा या नहीं आप में से, चौमुहा आता है एक हाईवे में गांव। चौमुहा क्या है कि वहाँ भगवान ने ब्रह्मा को दंडित किया था, चार मुंह वाला, जिसलिए उस गांव का नाम क्या है, चौमुहा। तो ऐसे कई ब्रज में गांव हैं, गोवर्धन के पास जाएंगे तो वहाँ एक गांव है जिस गांव का नाम अन्योर है। अन्योर का मतलब है कि भगवान ने जब गोवर्धन के रूप में अपना प्राकट्य किया था या सब ब्रजवासियों को कहा कि आप गोवर्धन की पूजा कीजिए, तो सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा कर रहे थे, नाना प्रकार के जो व्यंजन है हजारों मात्रा में वो भगवान को गोवर्धन को अर्पित कर रहे थे, और भगवान ने बहुत बड़ा विशाल रूप धारण करके गोवर्धन के ऊपर बैठ के सारा व्यंजन खाते जा रहे और सारे व्यंजन खाली हो रहे हैं, पात्र खाली हो रहे हैं, और कृष्ण कह रहे हैं कि अन्योर 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 मीन्स और लाओ, इसलिए उस गांव का नाम क्या रखा, अन्योर, उससे उस लीला का स्मरण होगा। तो ऐसा ब्रज भगवान की लीला स्थली है, ब्रज में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है कि जब भगवान ने अपने दिव्य लीलाओं को प्रकट नहीं किया। तो इस प्रकार से वज्रनाभ ने लगभग 12 या कुछ महत्वपूर्ण विग्रहों की स्थापना की थी वृंदावन में। एक थे मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद देव और उनमें से ये श्रीनाथ जी हैं। और काम्य वन में वृंदा देवी के विग्रह का भी स्थापना किया था। तो ये श्रीनाथ जी इनको ओरिजिनली कहते गोवर्धन धारी। इनका मुद्रा कैसे है, इस प्रकार से है। वो क्या कर रहे हैं श्रीनाथ जी, किसको धारण कर रहे हैं, गोवर्धन को धारण कर रहे हैं। तो ये गोवर्धन धारी है, इनका निवास गोवर्धन में था। तो ऐसे श्रीनाथ जी जो ब्रजवासियों के प्रेम के यह है सिंबल है, प्रेम के प्रतीक है। तो ऐसे श्रीनाथ जी या जो गिरिधारी जी हैं, इनकी स्थापना वज्रनाभ ने की थी। लेकिन समय के बाद कालांतर में क्या हुआ, धीरे धीरे मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, तुर्कीज आदि आए और उनके भय से पुजारियों ने ये सारे जो बड़े बड़े विग्रह थे इनको जमीन के अंदर डाल दिया। किसी को किसी कुंड में डाल दिया, किसी को जमीन के अंदर डाल दिया। तो ये विग्रह हजारों सालों के लिए अंदर ही थे। फिर ये जो गिरिधारी जिनका हम दर्शन करने जा रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में उनके बारे में वर्णन आता है, गर्ग संहिता आदि कई ग्रंथों में हमें इनको इनके बारे में पढ़ने को मिलता है। तो शास्त्र कहते हैं इनके कई नाम हैं। श्रीनाथ देव दमनम तम वदिष्यन्ति सज्जनहा, कि जो सज्जन लोग हैं, संत व्यक्ति हैं, साधुगण हैं, उनको क्या किस नामों से जानते हैं, श्रीनाथ। एक तो नाम श्रीनाथ है, दूसरा क्या है, देव दमनम। देव दमनम मतलब देवों में देवताओं के जो राजा है वो कौन है, इंद्र है। तो भगवान गिरिधारी ने अपना गिरिराज को धारण करके किसका अहंकार को दमित किया, इंद्र के, इसलिए उनका नाम देव दमनम है। श्रीनाथ देव दमनम तब मजि शांति सज्जना, गिरिराजो गिरो राजन सदा लीला करोतिया। तो ऐसे ये जो गिरिराज धारण करने वाले कृष्ण है, ये सदा सदैव गिरिराज में निवास करते हैं और वही अपने दिव्य लीलाओं को नित्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान द्वापर युग में थे तभी भगवान कृष्ण वहां लीला करते थे, अभी तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन शास्त्र कहते आद्यापिह से ही लीला करे गौर राय, कोन कोन भाग्यवान देखी बारे पाए। आचार्यगण कहते कि अद्यापि अभी भी कृष्ण अपने सारे पार्षदों के संग में ब्रज में नित्य लीला करते हैं, इसलिए शब्द है नित्य लीला। ऐसे नहीं कि कभी कभी लीला, हमेशा कृष्ण ब्रज धाम को छोड़ते नहीं है। लेकिन हमारे आंखों से क्या है, कृष्ण ओझल है, हमारी आंखों से हम देख नहीं सकते। जो क्वालिफाइड है, जो गोस्वामी गण है, उनको देख पाते हैं। जैसे हम रूप गोस्वामी के बारे में आपने सुना होगा, रूप गोस्वामी एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और उन्होंने देखा उस लीला को, भगवान के कि क्या लीला को देखा, कि श्रीमती राधिका पुष्पों का चयन करने के लिए आए हैं कुसुम सरोवर के आसपास, और वहाँ वो देखते कि एक डाली में बहुत सारे फूल है और उस फूलों को लेना चाहती हैं। तो कृष्ण तो उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए थे, चढ़ के उन्होंने क्या किया, श्रीमती राधिका की इच्छा को जाना और उस डाली को ऊपर से पांव रख के दबा के नीचे कर दिया। श्रीमती राधिका को पता नहीं है कि ऊपर कौन है, कृष्ण है। तो उनको लगा कि ये तो बहुत नजदीक है, उन्होंने एक हाथ से उस डाली को पकड़ा, तोड़ ही रहे थे तो भगवान ने उस अपना पांव निकाल दिया, श्रीमती राधिका ऊपर लटकने लगी। तो केवल भगवान के जो शुद्ध भक्त है, प्रेमी भक्त है, वही वृंदावन के दिव्य लीलाओं को देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से आज भी भगवान कृष्ण गिरिराज में अपनी लीलाएं करते हैं और ये विग्रह बहुत महत्वपूर्ण विग्रह है। वैसे हमारे संप्रदाय में जो गौड़िया, हम कौन से संप्रदाय में है, ब्रह्म रुद्र मध्व गौड़िया संप्रदाय, ये पूरा पूरा नाम है। वैसे तो चार संप्रदाय है, पहला तो ब्रह्म है, रुद्र है, कुमार है और श्री संप्रदाय है। तो हम ब्रह्म संप्रदाय में है, ब्रह्मा से ये परंपरा आती है। और इस संप्रदाय में मध्वाचार्य एक महान आचार्य हुए हैं दक्षिण भारत में, उसके बाद माधवेंद्रपुरी एक महान आचार्य हुए हैं, उन माधवेंद्रपुरी से आगे चल के चैतन्य महाप्रभु आदि भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं। तो माधवेंद्र पुरी से इस संप्रदाय को एक नया टर्निंग पॉइंट मिलता है। क्या कि इस संप्रदाय में पहले भगवान की जो भक्ति है वो ज्यादातर दास्य भावना में करते थे, लेकिन जब माधवेंद्र पुरी रूप जो प्रकट हुए उनसे ये जो माधुर्य भगवान की जो गोपिकाओं की भावना में भगवान की सेवा करने का जो मूड है वो प्रकट हुआ। माधवेंद्र पुरी, ये माधवेंद्र पुरी बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं, इनके नाम को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। तो ऐसे इस संप्रदाय में तीन विग्रह सबसे महत्वपूर्ण है, एक है मदन मोहन, दूसरे हैं गोपीनाथ और तीसरे हैं गोविंद देव। तो इन तीन विग्रहों को हर एक व्यक्ति को स्मरण रखना चाहिए कि हम जिस संप्रदाय में हैं उस संप्रदाय की ये तीन महत्वपूर्ण नाथ हैं, गौड़िया नाथ कहा जाता है, ये तो तीन विग्रह हैं। लेकिन ये जो विग्रह है श्रीनाथ जी जिनके बारे में वर्णन आता है, चतुर्णा भुवि नाथा नाम कृत्वा यात्रा नर सुधि, कि यदि व्यक्ति चार नाथों का यात्रा कर लेता है, और वो नाथ कौन कौन से हैं, जगन्नाथ हो, रंगनाथ हो, द्वारका नाथ एवच बद्रीनाथ चतुष्कोणे भारत तशापि वर्तते, कि भारत के चार कोनों में चार नाथ निवास करते हैं। हाँ, एक है जगन्नाथ है, बद्रीनाथ है, द्वारका नाथ है, और रामनाथ के वहां रंगनाथ है। हाँ, सबसे पहले इस पृथ्वी के कोई डीटीज है, विग्रह है, पहली कोई विग्रह मूर्ति प्रकट हुई इस संसार में तो वो रंगनाथ है दक्षिण भारत में। तो शास्त्र कहते कि ये चार नाथ है, मध्य गोवर्धन शापी नाथोयम वर्तते नृपहा पवित्रे भारते वर्षे पंचनाथा सुरेश्वरा, कि ये जो पांच नाथ भारत वर्ष को पवित्र करते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति चतुर्णा भुवि नाथा नाम कृत्वा यात्रा नरसुदि, इन चार नाथों की यात्रा कर लेता है, कौन कौन से चार नाथ, रंगनाथ, जगन्नाथ, द्वारकानाथ और बद्रीनाथ, न पश्यत देव दमनम स यात्रा निष्फला भवेत, और इन चारों का दर्शन करने के बाद भी वो व्यक्ति देव दमनम, देव दमन कौन है, श्रीनाथ जी है, कौन है, हाँ उन वो कैसे खड़े हैं श्रीनाथ जी, हाँ इस प्रकार से गोवर्धन धारण की मुद्रा में खड़े हैं, उनको देव दमन कहते हैं क्योंकि उन्होंने इंद्र का दमन किया था। यदि कोई व्यक्ति इन चार नाथों का दर्शन भी कर ले, यात्राएं भी करे, वो यात्रा निष्फल है जब तक वो किसका दर्शन नहीं करता, श्रीनाथ जी का दर्शन नहीं करता। तो इस प्रकार से यहाँ आना वास्तव में हमारी यात्रा को क्या करना है, सफल बनाना है, पूर्ण करना है। तो ऐसे जो ये श्रीनाथ जी हैं, हाँ क्योंकि जब वृंदावन में मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था तो इन श्रीनाथ जी को या जो ये गिरिधारी हैं, गोवर्धनधारी हैं, इनको जमीन के अंदर डाला गया था, और कई साल बीते। तो हमारे संप्रदाय के एक महान आचार्य हैं जिनका नाम था माधवेंद्र पुरी, हाँ इसके ऊपर एक अध्याय आता है चैतन्य चरितामृत में, बहुत ही सुंदर वर्णन, जब माधवेंद्र पुरी बंगाल से वृंदावन आते हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए, वृंदावन दर्शन करने के लिए, और वो माधवेंद्र पुरी हमेशा अकेले घूमा करते थे, अकेले ट्रैवलिंग करते थे। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि मेरे साथ और कोई एक व्यक्ति होगा, वो पता नहीं, वो हमेशा कृष्ण की बातें नहीं करेगा, वो इधर उधर की गंदी बातें करेगा, तो इससे मेरा मन कृष्ण में नहीं लगेगा। इसलिए वो क्या करते थे, नहीं चाहिए मुझे व्यक्तियों का संग, क्योंकि जो व्यक्ति कृष्ण का मुझे स्मरण नहीं कराता वो मेरा असली मित्र नहीं है, वो असली हितैषी नहीं है, वो मेरा शत्रु है। जो कृष्ण के स्मरण से हमें दूर ले जाता है वो चीज हमारे लिए माया है। माया का मतलब क्या है, लोग सोचते अरे घर परिवार होना, धन ऐश्वर्य होना, गाड़ी बंगला होना माया है। नहीं, किसने कहा है, ये चीज यदि आपको कृष्ण की ओर ले जाती है, कृष्ण का स्मरण बढ़ाती है, कृष्ण की सेवा में आपको प्रवृत्त करती है, वो माया नहीं है। माया क्या चीज है, जो चीज आपको कृष्ण को भुला देती है, वो आपकी पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, बड़ा घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, आपका मोबाइल हो सकता है, और आपके कपड़े भी हो सकते हैं, आपका सौंदर्य हो सकता है, आपका बल हो सकता है, कुछ भी चीज जो आपको कृष्ण से विमुख कर दे, जो कृष्ण का स्मरण आपसे क्या करे, हटा दे, वो आपके लिए माया है। और जो चाहे वो हमारे संबंधी आदि क्यों ना हो, जो हमें कृष्ण का स्मरण से दूर ले जाते, वो हमारे संबंधी हितेशी बंधु बांधव सोजन नहीं है, वो सारे हमारे शत्रु है। शास्त्र कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं। हम विभीषण को रावण क्या कर रहा था, दूर ले जा रहा था भगवान राम के स्मरण से, तो उनका भाई होने के बावजूद भी क्या था, विभीषण के लिए एक शत्रु था। तो इसी प्रकार से शास्त्र वर्णन करते हैं कि माया वो चीज है जो हमें कृष्ण से दूर ले जाती है। तो माधवेंद्रपुरी अकेले घुमा करते थे और सदैव भगवान नाम का कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर माधवेंद्र पुरी जब गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे तो वहां से एक गांव है अन्योर, उसके पास आते हैं और वहां एक कुंड है, गोविंद कुंड, जहां जब इंद्र भगवान से क्षमा याचना करने लगे और सुरभि गाय के साथ वहां आए थे और भगवान इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया था सुरभि गाय के दूध से और जल आदि से, तो इतना जल इकट्ठा हो गया वो चरणामृत, उसे कुंड बना गोविंद कुंड। आज अब ब्रज की परिक्रमा करते हैं गोवर्धन की तो उसमें आता है। तो उस समय माधवेंद्र पुरी वहां पहुंचते हैं और पहुंचते ही वहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का स्मरण करते हैं, उस लीला का स्मरण करते हैं उस स्थान के। हाँ, क्योंकि शास्त्र कहते हैं आप जिस स्थान में जा रहे हो उस स्थान में जाकर उस स्थान की महिमा को जरूर सुनना चाहिए, उस स्थान की महिमा को क्या करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। तो फिर ये जो क्योंकि इनकी एक वृत्ति क्या थी, अयाचिक वृत्ति, मतलब ये अपने लिए किसी से कुछ मांगते नहीं थे, भगवान की कृपा से कुछ आ जाए, इवन भोजन भी नहीं मांगते थे, आ जाए उसको स्वीकार करते थे भगवान की कृपा। इसको अजागर वृत्ति भी कहते हैं, अजागर कुछ काम नहीं करता, बैठा रहता है, कोई नजदीक आ जाए भगवत कृपा से मुंह में बस। तो उसी प्रकार से ये इसलिए भी भजन नहीं करते थे कि अभी मैं जप करता हूँ भगवान किसी को भेज दो, भूख लगी है प्रसाद भेज दे या कुछ नहीं, भगवान देखते कि मेरा भक्त इतना मग्न है, उसको अपने खान पान का भी ये नहीं है, शुद्ध बुद्ध नहीं है, तो भगवान खुद अरेंज करते। क्योंकि गीता में कृष्ण कहते अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परियुपासते, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसको सारे में सुविधाएं प्रदान करता हूँ और उसके पास जो चीजें हैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। तो माधवेंद्र पुरी के लिए, क्योंकि ब्रज में कोई जाए और भूखा रहे ये हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रज श्रीमती राधिका का राधिका के अधिकार में है, वृंदावनेश्वरी है। तो वहां जब माधवेंद्रपुरी बैठे थे और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था तो कृष्ण से रहा नहीं गया, कृष्ण ग्वाल बाल के रूप में आते हैं और उनको आकर कहते हैं, दूध का एक मटका लेके आते हैं और कहते हैं ये आपके लिए है। तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, भूखा हूं? तो कहते कि यहाँ गोविंद कुंड में जल लेने के लिए कुछ माताएं आए थे, स्त्रियां आए थे, उन्होंने कहा एक बाबा सुबह से बैठा है भजन कर रहा है, हाँ इसलिए मुझे उन्होंने भेजा ये देकर। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप इसको पी लो और मैं मटका लेने के लिए वापस आ जाऊंगा। तो माधवेंद्र पुरी उस बालक के सौंदर्य को देखकर आश्चर्य व्यक्त करते हैं और फिर माधवेंद्र पुरी देखते हैं वो चला जाता है और माधवेंद्र पुरी जब जल उस दूध को पीते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो उनको तंद्रा आती है, नींद आ जाती है। तो उस समय स्वप्न में भगवान आते हैं, कहते हैं माधवेंद्र, हे माधवेंद्र पुरी, इतने सालों से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आओ तुम, बहुत अच्छा हुआ तुम आए यहाँ गोवर्धन में, तुम आओ और क्या करो, मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ नजदीक की झाड़ियों में मैं बहुत अधिक कष्ट महसूस कर रहा हूँ, जमीन के अंदर वो झाड़ियों के बीच में हूँ, आप आओ और मुझे वहां से निकालो, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। तो भी देखते कि ये स्वप्न तो भगवान उनका हाथ पकड़कर स्वप्न में ले गए थे उस स्थान में, माधवेंद्रपुरी जग जाते सुबह तो देखते कि ओ मुझे जरूर ये भगवान की सेवा करनी है। तो उस वहाँ के नज़दीक के गांव के सारे लोगों को लेकर हम बहुत सारा खुदाई करने का सामान लाते हैं और खोदते हैं, झाड़ियों को काटते हैं, खुदाई करते करते उनको क्या मिलते हैं, ये विग्रह मिलते हैं, हाँ, गोवर्धनधारी। तो इस विग्रह इतने बलशाली है, कौन उठाएगा, माधवेंद्रपुरी को भगवान शक्ति देते हैं, वो उठा के वो गो डेटीज को लेकर, हाँ, क्योंकि गोवर्धनधारी हैं, उनका गोवर्धन पर अधिकार है, तो उनको गोवर्धन के ऊपर जाकर स्थापित करते हैं। और उस समय कुछ नहीं था उनके पास, कहाँ स्थापित करेंगे, ना टेम्पल है ना सुविधा है। तो माधवेंद्रपुरी उनको लेकर एक बहुत बड़ी शिला के ऊपर, पत्थर के ऊपर रखते हैं और पीछे एक पत्थर लगाते हैं और वह भगवान को रखते हैं। तो सारे ब्रज में ये न्यूज फैलती है कि गिरिराज को धारण करने वाले गोवर्धनधारी प्रकट हो गए हैं। तो हजारों हजारों लोग आसपास के गांवों से, मथुरा से धनाढ्य लोग आते हैं और अपनी सेवा करने के लिए तैयारी दर्शाते हैं कि क्या हम सेवा करें। तो माधवेंद्रपुरी के आदेश अनुसार कई प्रकार की सेवा वहाँ उनकी की जाती है। कई सारे लोग, हर ब्रज के जो व्यक्ति हैं उस विग्रह के लिए एक एक गाय दान देता है, तो इतनी सारे गायें हो जाती है उनके पास। और फिर छोटा सा मंदिर बनाया जाता है और किचन बनाया जाता है और सारे ब्रज के लोग आकर उत्सव मनाते हैं, अन्नकूट फेस्टिवल मनाते हैं। उस अन्नकूट फेस्टिवल में वो क्या करते हैं, बहुत सारे व्यंजन को बनाया जाता है और फिर माधवेंद्रपुरी सारे व्यंजनों को उनको अर्पित करते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से शिनाजी का या गोवर्धनधारी का प्राकट्य वास्तव में वृंदावन में हुआ था और भगवान के सेवा के प्रति माधवेंद्रपुरी का इतना अधिक भावना था। पहले तो स्वप्न में आकर कहा कि भगवान आप मुझे निकालो बाहर, तो भगवान को बाहर निकालते हैं। और जब एक साल होता है तो माधवेंद्रपुरी को दूसरी बार भगवान स्वप्न में आदेश देते हैं कि हे माधवेंद्र, तुमने मुझे ऊपर निकाला और 200 घड़ों से अभिषेक किया था जल से, क्योंकि जमीन के अंदर भगवान बहुत अधिक गर्मी महसूस कर रहे थे। तो भगवान ने कहा कि तुमने मुझे इतने सारे घड़ों से जल से अभिषेक किया, फिर भी मेरे शरीर की गर्मी गई नहीं है, तो तुम क्या करो, मेरे लिए मलय का चंदन लाओ, चंदन से लेप लगाओ, जिसके द्वारा क्या होगा, मुझे शीतलता मिलेगी। तो भगवान की सेवा के लिए माधवेंद्रपुरी ने सोचा नहीं, अरे मुझे जगन्नाथपुरी वृंदावन से पैदल जाना पड़ेगा, हम सोचेंगे थोड़ी सी सेवा हमें मिलती है तो हम उसमें कितने बहाने बनाते हैं सेवा न करने के लिए। हाँ, हम सोचते मेरे लिए ये फैसिलिटी चाहिए, वो सुविधा चाहिए, तब भगवान की सेवा करूँगा। नहीं, सेवा मिलते हमें सोचना चाहिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि भगवान की ये सेवा, ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहा हूँ, साक्षात किसकी सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण की। बहुत जन्मों के सुकृति के बाद व्यक्ति को भगवत सेवा मिलती है। माधवेंद्रपुरी इतने बड़े भक्त थे, वो अपने किसी शिष्य या किसी को भी बोलते थे कि जाओ चंदन लेके आओ जगन्नाथपुरी से, लेकिन उन्होंने कहा ये भगवान ने कहा है मुझे इस सेवा के लिए, स्वयं वो पैदल निकले वृंदावन से जगन्नाथपुरी। और वहां जाकर हम देखते हैं कि किस प्रकार से वहां जाकर जो गोपीनाथ हैं, खीर चोरा गोपीनाथ के, वहां वो निवास करते हैं माधवेंद्रपुरी। और माधवेंद्रपुरी बाद में उनके लिए जो गोपीनाथ है वहाँ खीर चुराते हैं और माधवेंद्रपुरी फिर वृंद जगन्नाथपुरी जाकर चंदन लेके आते हैं स्वयं भगवान की सेवा के लिए। तो शास्त्रों में इस चीज़ का वर्णन आता है कि किस प्रकार से माधवेंद्रपुरी की जो सेवा की भावना थी भगवान के लिए सर्वोच्च थी। तो हम धाम में आते हैं तो धाम में तीर्थ स्थानों में आने का एक में उद्देश्य है कि वापस जाने के बाद हमारा भगवान के प्रति जो सेवा की भावना है उसमें क्या होनी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। और वो यदि नहीं हुआ तो हमारी धाम यात्रा या जो भ्रमण है वो निष्फल है। गए और कुछ डुबकी लगा दी, कौवा जब जाता है तीर्थों में डुबकी लगाता है, बाहर निकलता है काला ही रहता है और काव काव ही करेगा। तो बदल चेंज आना चाहिए, चेंज हमारे आचरण में, हमारे वाणी में, हमारे भजन साधन में, हमारी सेवा की भावना में क्या होना चाहिए? बदल आना चाहिए। यदि बदलाव नहीं हुआ तो हमारा ब्राह्मण कौवे के समान है। कौवा निकला तो काला था, पहुंचा, डुबकी लगाई, थोड़ा सा प्रसाद प्रसाद खा लिया कूड़े कचरे में, और फिर वापस आया तो काला की काला ही रहा। पहला काव काव करता था, भक्तों ने वह हरे कृष्णा सिखाया धाम यात्रा में, वापस आया तो भी क्या उसके मुंह में काव काव, क्या निकलना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए हम यात्रा से वापस जा रहे हैं तो इस भावना से जाए कि कृष्ण को वापस ले जा रहा हूं अपने जीवन में, और जाकर परिवर्तन आना चाहिए। और वो परिवर्तन कैसे आएगा? जब हम वहां जाकर इन तीन चीजों को करेंगे, जिसको मैंने कहा था चैतन्य महाप्रभु ने कल, जैसे हमने सुना तीन चीजें महाप्रभु ने कही कि यदि आप तीन चीजें करते हो तो कृष्ण साक्षात निवास करते हैं। वो तीन चीजें क्या है? हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम का उच्चारण करना, और दूसरा क्या है? रोज भगवद गीता या श्रीमद भागवतम को पढ़ना, और तीसरी चीज क्या है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो ये हमारे ऊपर है कि अभी मुझे अपने जीवन में हंस बनना है या फिर मुझे कौवा बनना है। तो हंस तो अच्छे अच्छे स्थानों में निवास करता है, निर्मल जलाशय में निवास करता है, दूध का पान करता है। इसलिए जो महान महान वैष्णव होते हैं, भक्त होते हैं, उनको परमहंस कहा गया है। परमहंस का मतलब है जो इस भौतिक चीजों में आनंद नहीं लेते, परमहंस कहते हैं। जैसे हंस का गुण क्या है, उसको हंस को आप दूध और पानी दो तो वो पानी को अलग कर देगा और दूध को पिएगा। ये कला किसके पास है? किसी के पास नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद भागवतम के पहले स्कंद में कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को हंस के जैसे बनने का प्रयास करना चाहिए। और हंस हम तभी बनेंगे जब जाने के बाद भी हम अपने आप को भक्तों के संग में रहेंगे, और भक्तों में संग में रहना ही केवल पर्याप्त नहीं है कि मैं रोज भक्तों को मिल रहा हूँ, गप्पे लगा रहा हूँ, खा रहा हूँ, उठ रहा हूँ, सो रहा हूँ, भक्तों के संग में नहीं। भक्तों के संग में आकर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान की कथा को सुनना चाहिए, भगवत चर्चा करनी चाहिए, नाम उच्चारण करना चाहिए, भगवत सेवा करनी चाहिए। ये भक्तों के संग में आकर करना चाहिए। भक्तों के संग में आकर ये नहीं कि यहाँ वहाँ की बातें, उसने क्या किया, वहाँ का क्या हुआ, मोबाइल का ये हुआ, ये सब चीजें नहीं। हाँ, तो हम कव्वे के कव्वे ही बने रहेंगे। तो भगवान ने हमें हंस बनने का मौका दिया है। हाँ, तो वह हंस बन सकते हैं भक्तों के संग का जब हम लाभ उठाते हैं। तो इस यात्रा का लाभ, इस यात्रा सफल तभी मानी जा सकती है जब आप वापस जाकर क्या करोगे, अपने जीवन में एक व्रत लेके जाओगे यहाँ से कि हे श्रीनाथ जी, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, बहुत जन्म मैंने बिता दिए माया की सेवा करके, विष का पान करके, विषयों का उपभोग करके, अभी बस मेरे पास मृत्यु मेरे सामने दिख रहा है, मृत्यु के बहुत नजदीक में खड़ा हूं, और मैं मृत्यु का आलिंगन नहीं करना चाहता, लेकिन मृत्यु जरूर मेरा आलिंगन करेगा। कोई हमसे दूर रहे या ना रहे, नजदीक रहे ना रहे, लेकिन एक चीज हमेशा नजदीक रहती है, वो क्या है? मृत्यु। मृत्यु हमारे संग चलता है हमेशा, शाडो की तरह, छाया की तरह। तो इसलिए श्रीनाथ जी से प्रार्थना कर सकते कि मुझे आप शक्ति दे दो कि मैं रोज आपके नामों का, हरि नाम का जप करूं, आपकी सेवा करूं, रोज श्रीमद भागवतम भगवद गीता को पढ़ने का प्रयास करूं, रोज घर में कृष्ण प्रसाद बनाओ, सबको सर्व करो। इससे ज्यादा आनंददायी जीवन क्या है? आपको यात्रा में आने से आनंद आता है कि नहीं आता? क्यों आता है? क्योंकि भक्तों का संग है, कृष्ण प्रसाद है, भगवत सेवा है, बस। और ये चीजें जीवन में नहीं है, जीवन में चाहे जो मर्जी हो हमारे, चाहे आप भारत के राजा बन जाओ या अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाओ, आप हमेशा असंतुष्ट रहोगे और दुखी बने रहोगे। तो इसलिए ये सरल है। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि घर को ऐसे बनाना चाहिए जो मंदिर में बदल जाए। भक्ति विनोद ठाकुर जो महान आचार्य थे, गृहस्थ थे, पत्नी बच्चे सब कुछ था, वो मैजिस्ट्रेट थे, लेकिन वो कहते कि जिस दिन मैं घर में जाता हूँ शाम को वापस, जेदी न ग्रहे भजन देखी ग्रहे ते गोलोक भाई। जिस दिन में घर में अपने शाम को जाता हो पैर डालता हो तो वो घर घर नहीं लगता, वो गोलक वृंदावन लगता है, वैकुंठ लगता है, क्योंकि वहां सदैव क्या होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमारे हाथ में है, घर का वातावरण इतना सुव्यवस्थित होना चाहिए कि जिससे हम कृष्ण को ना भूल पाए। तो ये गृहस्थ का कर्तव्य है कि हर क्षण हर रोज भगवान का स्मरण अपने जीवन में बढ़े। तो उस करने के लिए हम बहुत सरल उपाय हैं, भगवान से आप ये लीजिए, कृपा लीजिए और कुछ वापस जाके मुझे करना, एक चीज ऐड करनी है लाइफ में और वो रोज करनी है, ये व्रत लीजिए, तभी यात्रा सफल है। अन्यथा बहुजन में करे यदि श्रवण कीर्तन तब उतना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ऐसी हजारों हजारों यात्राएं आप करते रहेंगे फिर भी कृष्ण के चरणों में आपका मति लगेगा नहीं, इम्पॉसिबल। हजारों यात्राओं में जाओ, कितने करोड़ हजारों लोग गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हैं महीने में 15 दिन में, आके वही कोई कृष्ण कथा नहीं, कोई कृष्ण सेवा नहीं, वही बीड़ी सिगरेट और तंबाकू और भौतिक कार्यों में मग्न, मूवीज आदि। कृष्ण में मन लगाए तो मूवी में कैसे मन लगेगा, है कि नहीं? एक में कृष्ण में लग गया तो ये आकर्षण नहीं रहेगा। तो इसका मतलब अभी भी हम बहुत ग्रॉस लेवल में माया ने हमारी गर्दन को पकड़ा हुआ है, आलिंगन किया हुआ है। या तो आप कृष्ण दोनों को एक साथ नहीं देख सकते, या तो कृष्ण को देख सकते हो या तो माया को देख सकते हो। यही है जीवन का लक्ष्य, अभी यही बनाना चाहिए कि बस समय बहुत कम है, इस भ्रम में ना रहे कि अभी मेरी आयु 30 साल हो गई, 25 साल हो गई, 35-40 नहीं, लंबे समय के बाद मरूंगा, नहीं। हम अभी बीच में 6 महीने पहले हम 10 ब्रह्मचारी स्नान करने के लिए गए थे गढ़गंगा, जस्ट एक दिन का। हमने सोचा कि हम फ्री हो जाते हैं, सारे सेवन से फ्री हो गए, 2-3 कार्स ले ली और सब गए, बहुत सारा डिफरेंट बहुत सारा प्रसाद बनाया टेंपल में, फिश प्रसादम गए और हम कीर्तन किए वहां जाकर, पानी के अंदर 2-3 घंटा नाचे गाए। और उसी समय हम जब वापस आए तो 10 नहीं आए वापस, कितने आए, 9 ही वापस आए। हमारे सामने हमारे में से जो डिवोटीज हैं नदी को पार करने के लिए अंदर घुसे, घुसते ही एक डिवोटी एक ही सेकंड में डूब गया, वापस नहीं दिखाई दिया। तो मतलब हम ये नहीं सोचना चाहिए, और वो चिल्ला रहा था दूर भय के, और इम्पॉसिबल था, उस बिल्कुल खत्म ही हो गया था, डूब गया। हमने कितने बोट्स लाए, क्या क्या किए, लेकिन हम उनको ढूंढ नहीं पाए, हाँ शरीर छोड़ दिया हमारे सामने ही। तो मतलब कोई भी व्यक्ति ये गारंटी नहीं दे सकता कि नहीं मेरे पास बहुत लंबी आयु है, हाँ बल्कि कृष्ण को हमें रोज धन्यवाद देना चाहिए, कृष्णा सुबह उठते कि आपने बहुत कृपा की, आज का सूर्योदय भी आपने मुझे दिखाया। हाँ, जो लंदन की रानी थी एलिजाबेथ, वो रात को जब सोई बेड में ही मर गई, सुबह उसके जो नर्स आदि है वो उसको जगाने गए तो देखा मरी हुई है। तो हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि कल का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं, आज का दिन बहुत अच्छा है, आज के दिन भगवत सेवा करने का प्रयास करो, आज के दिन हरि नाम का उच्चारण करो, आज के दिन गीता भागवत को पढ़ो, आज के दिन कृष्ण कथा को सुनो। तो हर दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण, इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा आयुष्य क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। आयुष्य में हर एक क्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, करोड़ों करोड़ों रुपए देकर भी आप अपने जीवन में एक क्षण वापस नहीं ला सकते। हाँ, वो डिवोटी ने जब शरीर छोड़ा तो मैं वहां 2-3 दिन रहा और उस बॉडी को ढूंढने के लिए गया, इतना भयावह लाइफ का एक्सपीरियंस था। बॉडी को ढूंढने के लिए हम पानी में गए 5-6 घंटा, सुबह 6 बजे से एक नाव लेकर, और वहां रोज कहीं ना कहीं लोग डूबते हैं। आगे गया तो इतने सारे कुत्ते घूम रहे थे और इतने डेड बॉडीज देखी मैंने, तो पता चला कि गीता में कृष्ण कहते कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। मेरे सामने में डेड बॉडीज यहाँ पड़ी है, कितनी दूर जंगल में जा कुत्ते खा रहे हैं, और वहां जाकर मुझे देखना पड़ रहा था कि यह हमारा शरीर तो नहीं, हमारे डिवोटी का। तो कितने बॉडीज देखे हमने, स्त्रियों के शरीर और बच्चों के, माताओं के, इतनी भयावह स्थिति में। दो दिन के बाद गंगा से डूब के बाहर आते जंगल में। लेकिन बहुत अधिक भय हो रहा था हृदय में जब ये सारी चीजें देख रहे थे, कुत्ते कैसे काट रहे थे ना पेट और ये सब चीजें, तो इतना भय हो रहा था शरीर में ये सब देखकर। उसी समय भगवान से प्रार्थना करने लगे तो फिर दूर से देखा नदी के किनारे एक डेटिस दिखाई दी हमें। मैंने कहा, पहले तो भय हो रहा था, देखा तो दूर से देखा, मैंने कहा ये तो जगन्नाथ जी हैं। वहां इतने जंगल में इतनी भयावह स्थिति में एक नदी के किनारे और वहां जगन्नाथ जी के इतने बड़े विग्रह थे अकेले, और हम उतरे जल्दी और फिर प्रणाम किया जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ के विग्रह को ले आए। तो इस प्रकार से समय बहुत कम है, तो व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए, क्योंकि इन यात्राओं का लाभ यही है, यात्राओं में आकर हम कुछ सीखे और अपने जीवन में अप्लाई करने की तैयारी रखें। अन्यथा ये यात्राएं हमारी लंबी यात्राओं को बढ़ा भी सकती हैं, जन्म मरण की यात्रा को बढ़ा सकती हैं और हमारी यात्रा को फुल स्टॉप दे सकती हैं। क्या दे सकती हैं? फुल स्टॉप। कौन चाहता है फुल स्टॉप? हाथ ऊपर कीजिए। फुल स्टॉप चाहते हैं ना, ये जन्म मरण की यात्रा नहीं चाहिए। तो श्रीनाथ जी का कृपा की याचना कीजिए, प्रार्थना कीजिए और जरूर कुछ व्रत लीजिए कि मुझे आध्यात्मिक जीवन में कुछ चीजें ऐड करनी है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्रीनाथ जी के, नाथ द्वारदाम के, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के, श्रीपाद वल्लभाचार्य के, निताय